संबंध 20वें से 39वें श्लोक तक भगवान ने गुणों की मुख्यता को लेकर ज्ञान कर्म आदि के तीन तीन भेद बताए। अब इनके सिवाय गुणों को लेकर सृष्टि की संपूर्ण वस्तुओं के भी तीन तीन भेद होते हैं। इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान आगे के 40वें श्लोक में प्रकरण का उपसंहार करते हैं।
न तदस्तिते व्याम्बा देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मोक्तं यदेवि स्यात्रिभे गुणैः।
पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। व्याख्या। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहा, तो भगवान ने पहले त्याग यानी कर्मयोग का वर्णन किया। उस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान ने कहा कि जो त्यागी नहीं है उनको अनिष्ट इष्ट और मिश्र यह तीन प्रकार का कर्मों का फल मिलता है और जो सन्यासी हैं उनको कभी नहीं मिलता। ऐसा कहकर 13वें श्लोक से सन्यास का यानी सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करके पहले कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि पांच हेतु बताए। 16वें 17वें श्लोकों में कर्तृत्व मानने वालों की निंदा और कर्तृत्व का त्याग करने वालों की प्रशंसा की। 18वें श्लोक में कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का वर्णन किया, परंतु जो वास्तविक तत्व है वह न कर्म प्रेरक है और न कर्म संग्राहक। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह तो प्रकृति के गुणों के साथ संबंध रखने से ही होते हैं। फिर गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि धृति और सुख के तीन तीन भेदों का वर्णन किया। सुख का वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृति के साथ यत्किंचित संबंध रखते हुए ऊंचे से ऊंचा जो सुख होता है वह सात्विक होता है, परंतु जो स्वरूप का वास्तविक सुख है वह गुणातीत है, विलक्षण है, अलौकिक है। सात्विक सुख को आत्मबुद्धि प्रसादजम कहकर भगवान ने उसको जन्य बताया यानी उत्पन्न होने वाला बताया। जन्य वस्तु नित्य नहीं होती, इसलिए उसको जन्य बताने का तात्पर्य है कि उस जन्य सुख से भी ऊपर उठना है, अर्थात प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होकर उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना है जो कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है। इसलिए कहते हैं न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः। यहाँ पृथिव्याम पद से मृत्युलोक और पृथ्वी के नीचे के अतल वितल आदि सभी लोकों का, दिवि पद से स्वर्ग आदि लोकों का, देवेशु पद को प्राणी मात्र के उपलक्षण के रूप में उन उन स्थानों में रहने वाले मनुष्य देवता असुर राक्षस नाग पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष आदि सभी चर अचर प्राणियों का और वा पुनः पदों से अनंत ब्रह्मांडों का संकेत किया गया है। तात्पर्य यह हुआ कि त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सब के सब त्रिगुणात्मक हैं। सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदे भी स्यात् त्रिभिर गुणैहि। प्रकृति और प्रकृति का कार्य यह सब का सब ही त्रिगुणात्मक और परिवर्तनशील है। इनसे संबंध जोड़ने से ही बंधन होता है और इनसे संबंध विच्छेद करने से ही मुक्ति होती है, क्योंकि स्वरूप असंग है, स्वरूप स्व है और प्रकृति पर है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। यह एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। कारण कि अहंकार से प्रकृति जन्य पदार्थों में आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे पराधीनता में भी स्वाधीनता दिखने लग जाती है। इसलिए प्रकृति जन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। प्रकृति जन्य गुणों में रजोगुण और तमोगुण का त्याग करके सत्वगुण बढ़ाने की आवश्यकता है। सत्वगुण में भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है, परंतु सात्विक सुख और ज्ञान की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुख और ज्ञान की आसक्ति बांधने वाली है। इसलिए इनकी आसक्ति का त्याग करके सत्वगुण से ऊंचा उठे। इससे ऊंचा उठने के लिए ही यहाँ गुणों का प्रकरण आया है। साधक को तो सात्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख, इन पर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए और सावधानी से राजस तामस का त्याग करना चाहिए। इनका त्याग करने में सावधानी ही साधन है। सावधानी से सब साधन स्वतः प्रकट होते हैं। प्रकृति से संबंध विच्छेद करने में सात्विकता बहुत आवश्यक है, कारण कि इसमें प्रकाश अर्थात विवेक जागृत रहता है, जिससे प्रकृति से मुक्त होने में बड़ी सहायता मिलती है। वास्तव में तो इससे भी असंग होना है।